खुदावंद में आप सब की सलामती हो, आए उस खुदावंद खुदा के हजूर झुके और आपके सवालों का जवाब, आपकी फिक्रों को दूर करने वाला, आपकी नाउम्मीदी में आपको अमीद देने वाला यहोवा यरी, जिसका हाथ बारा नहीं हो गया के छुड़ा ना सके और जिसका कान भारी या बहरा नहीं हो गया के सुन ना सके, वो अपने लोगों की दुआओं पर कान लगाता है, उसे पुकारें। कादर मुतले खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह के लिए, सारी रात की हिफाजत और निगेबानी के लिए। खुदावन, तू जो इब्राहिम, इजहाक, याकूब का खुदा है, तू जो पालूस का खुदा है, तू जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे रहनुमा, हमारे छुड़ाने वाले आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। आज हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखें, हमारे हौसले को बुलंद करने का वसीला हो, हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तेरे प्रस्तुत करने को हमारी रूह मगन हो, और इन नबियों और रसूलों और शिगिर्दों और ईमानदारों और घिरे हुए और नामीद और सताए हुए लोगों की ज़िंदगी के वसीला से, जिनको तूने अपने कलाम में दर्ज किया, जिनके बारे में लिखा, उनके वसीला से बरकत पाने वाले बने। आज हम सबको छू, बड़ी बरकत दे और हम सब के लबों का, दिलों का, दिमागों का, सोचों का, ख्यालों का रखवाला बन। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, ये दौर जदीद दौर है और जदीद दौर में जदीद किस्म की मुसीबतें, परेशानियां और बहुत सी आजमाइशों का सामना है। इसलिए हमें खुदा का कलाम हर तरह की ना अमीदी में अमीद देता है और इसी तरह खुदा का कलाम हमें जब हमारे कदमों के सामने तारीकी छाई होती है तो हमारे लिए नूर बन जाता है। सो इसीलिए आज हम ना के शेख चिली की लिखी हुई कोई कहानी या रसाला या जलंत्री में से कोई बात सीखेंगे नहीं, बल्कि खुदावंद के कलाम में से, जो जिंदा और पाक और मोहतबर है, खुदावंद के कलाम में से जो जिंदगी बख्शता है। आज हम देखेंगे पालूस रसूल के बारे में, जिसने ये खत लिखा। इफिसियों 3:3, उसकी पहली हम 11 आयात पढ़ेंगे और इसमें से हम सीख रहे हैं कि पालूस रसूल उस भेद के बारे में बात करेगा जो फरिश्तों से, आसमानी हुकूमतों से, जमीन के लोगों से, हर नस्ल से पोशीदा था। उसकी दुआ को देखेंगे कि उसकी दुआ क्या है। कैद खाना में बैठा हुआ वो ये दुआ करता है कि खुदावंद, जो कोई तेरे बेटे पर ईमान लाए, उसकी जिंदगी में ये ख्वाहिश पैदा हो कि तेरे बेटे की गहराई, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई को जाने के वो कितना अफजल है। और फिर वो इसी बात में ये बात करेगा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम क्यों इस ज़मीन पर मौजूद हैं, हमारे ज़ाहर, हमारे मौजूद होने का मतलब क्या है। इफिसियों 3:3, उसकी पहली आयत, खुदावंद का बंदा पालूस कहता है, इसी सबब से मैं पालूस, जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यीशु का कैदी हूँ। शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद जो मुझे मुकाशफा से मालूम हुआ, चिनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा है, जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था, जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है, यानी ये कि मसीह यसू में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं, और खुदा के उस फजल की बख्श से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना, मुझ पर जो सब मुकसों में छोटों से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ, और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत और तरह तरह की हिकमत उन हुकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। उसी अजली अरादा के मुताबिक जो उसने हमारे खुदावंद यीशु मसीह में किया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आपने पढ़ते हुए सुना होगा कि पालूस रसूल उस भेद, उस मुकाशफा और उस खुशखबरी के बारे में बयान करता है जो कौमों से, जो फरिश्तों से, आसमानी हुकूमतों से और उन देखी अनदेखी तमाम हुकूमतों से नावाकफ थी, राज था। सो आज हम गौर करेंगे पालूस की जिंदगी पर। कल हमने सीखा था कि किस सबब से, जैसे हमने सीखा था कि हर एक चीज का कोई ना कोई सबब है, पंखे का सबब है, कुर्सी का कोई ना कोई बनाने का सबब है, सबब का मतलब कोई वजह होना। पालूस रसूल कहता है पहली आयत में, इसी सबब से मैं पालूस, जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यसु का कैदी हूं। तो हमने सबब सीखा था कि क्या सबब था। आज हम देखेंगे कि पालूस कौन था। किसी को पहला है कि किसी को पता है कि पालूस का पहला नाम क्या था? साउल। उसका नाम क्या था? साउल था। किसी को पता है उसका काम क्या था? खुदावंद के लोगों को सताना, कत्ल करना। आप से सोचते होंगे कि ये कैसे हो गया। हम सब की भी ऐसी ही हालत थी, जैसे पालूस का ये पेशा था कि मसीहियों को कत्ल करना। अगर नहीं यकीन तो मेरे साथ चंद एक हवाला जात निकालें। आज हम देखेंगे कि पालूस रसूल जो पहले सौल कहलाता था, सौल का मतलब है बड़ा, जो अपने आप को मोहतबर जानता है, बड़ा जानता है, अपने आप को इख्तियार में या ताकत में बेहतर जानने वाला, ये सौल का मतलब है। आए उस सौल की एक झलक देखें पीछे जाकर, इससे पहले कि वो यीशु मसीह को कबूल करता, वो क्या करता था, उसका मौकफ यानी कि उसका मतलब, उसके जीने की वजह क्या थी। सो मेरे साथ निकाले चंद एक हवाला जात। इमाल की किताब उसका 8वां बाब। यहां पर हम उस सौल को देखेंगे जिसके दिल की ख्वाहिश है कि अपने इख्तियार वालों को खुश करे, जिसके दिल की ख्वाहिश है कि वो शरीयत के तमाम अहकाम पर चले और अपने मजहब की हफाजत के लिए जो कुछ बन पड़े उसे करे, जो कुछ किसी भी हद तक। आज की दुनिया में भी हम देखते हैं कि लोग अपने मजहब को बढ़ाने के लिए हर तरह का कदम उठाने के लिए तैयार हैं। जिस दौर में, जिस शहर में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, हर रोज बेशुमार खबरें हम सुनते हैं कि मसीहियों के साथ ये हुआ, मसीहियों की इस वजह से कैद खाना में डाला गया, मसीहियों को इस वजह से फांसी पर चढ़ा दिया गया, फलां गांव में 12 साल की लड़की के साथ ज्यादती हुई, उसके बाद उसका बदन फेंक दिया गया, मुर्दा कर दिया गया। जैसे उस दौर में पालूस का ये मकसद था, ये वजह थी कि अपने मजहब, अपनी उस तालीम के मुताबिक जो कोई उसके खिलाफ जाए उसे कत्ल करें। पालूस का पहला नाम साउल था। साउल का मतलब है बड़ा और पालूस का मतलब है छोटा, खाकसार जिसे कह सकते हैं। 8वें बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे, यहां पर वो शख्स से हम वाकिफ होंगे जिसका काम था शहर बा शहर जाना, लोगों को संसार करना। संसार करना ये ऐसी, क्या कहते थे, सजा थी जो उस दौर में और आज भी बहुत से दुनिया के इलाकों में मौजूद है। जब कोई किसी गुनाह या मजबूरी में या किसी भी परेशानी, किसी भी गुनाह में पकड़ा जाता था, अगर औरत है या मर्द है, तो सारा गांव इकट्ठा होकर हाथ के साइज का, यानी कि इतना बड़ा पत्थर होता था जिसे मारा जाता था जब तक वो बंदा या बंदी मर ना जाए। सो पालूस रसूल इन कामों में बड़ा सरगर्म था जब वो सौल था। सो आठवें बाप की पहली आयत में लिखा है, और सौल उसके कत्ल पर राजी था। किसके कत्ल पर? हमने पिछले बाप में जब देखा पढ़ते हैं तो स्तिफनस को अभी अभी शहीद किया गया है, जिसका कोई जुर्म नहीं था। उसका ये जुर्म था कि उसने मसीह की गवाही दी। उसने मसीह का इनकार नहीं किया बल्कि इकरार किया कि वही खुदावन है, वही निजात दिंदा है, उसके सिवा निजात नहीं है। उसने सच बोला, और सच का जो नतीजा या उसे अजर मिला वो क्या था? संसार किया गया, पत्थरों से मारा गया। और ये बहुत ही, क्या कहते थे, दर्दनाक मुसीबत से, मुश्किल से भरी हुई मौत का इजहार था। आप उम्मीद कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि किसी को पत्थरों से मारना और उसकी जान आस्ता आस्ता निकलनी। सो आठवें बाप की पहली आयत में, और ये सॉल उसके कत्ल पर राजी था। किसके कत्ल पर? स्टिफनस के कत्ल पर। और फिर इसी आयत के दूसरे हिस्सा में लिखा है, उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलम में थी बड़ा जुल्म भरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में परगंदा हो गए। बड़ा जुल्म भरपा हुआ। जब हम इसकी तफसील में जाएं तो बहुत सी कहानियां, बहुत से वाकयात जो बाइबल में दर्ज नहीं किए गए, तारीख हमें बताती है। तारीख की जो उस वक्त के जो कहते हैं कि आंखों देखे गवाह थे, उन्होंने वाकयात लिखे कि उस दौर में ऐसा कलीसियाओं के साथ हुआ। बच्चों को जलाया गया, गांव के गांव तबाह कर दिए गए, काटा गया, मारा गया, और बहुत से दूसरे वाकयात पेश आए। तो यहां पर लिखा है परगंदा हुए। परगंदा यानी कि वो भाग गए इर्द गिर्द के इलाकों में। और ये कैसी हालत है? टोबा टेक सिंह में जब आज से तकरीबन 6 साल पहले जब गैस की जो आग जली तो सब लोग परगंदा हुए, भाग गए। उनको अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी, अपने माल डंगर की किसी शय की फिक्र नहीं थी, वो जस्ट भागे। सो ऐसा ही मंजर है कि यरूशलम की कलीसिया पर जब जुल्म भरपा हुआ, ये जुल्म यहां आज के दौर में लोग गन इस्तेमाल करते हैं, उस दौर में लोहे के हथियार होते थे जिनसे बहुत ज्यादा क्या होती थी, दर्द होती थी, मुख्तलिफ किस्म की मुसीबत होती थी। सो सॉल का ये काम था। तो सॉल ने क्या किया? तीसरी आयत में, और दयानतदार लोग स्टिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया, और सॉल कलीसिया को इसी तरह तबाह। फिल्मों में हम देखते हैं कि मैं जाकर, हीरो कहता है कि उसके खानदान को, विलन को तबाह कर दूंगा। तबाह का लफ्ज जब हम देखते हैं तो अगर बांब चलाया जाए तो तबाही का मतलब कि कुछ भी बाकी ना रहे। सो सॉल यही करता था। सॉल क्या करता था? वो इख्तियार वाला था, बहुत ही मजबी इंसान था, और उसका काम था तबाही करना। तो क्या कर रहा है सॉल? कलीसिया को इसी तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर, घर घर घुसकर। बेशक उनके पास घर था, लेकिन वो जाता था, उनके दरवाजे तोड़ता था, या छत से, या पीछे से, या कहीं से भी। उसके साथ बड़ी प्लटून है जो घरों में जाती थी और क्या करती थी, नुकसान करती थी। घर घर घुसकर मर्दों और औरतों को घसीट घसीट कर, घसीट घसीट कर। आप में से कुछ बच्चे इस तजर्बे से वाकिफ हो सकते हैं कि जब आप कोई ऐसी हरकत करते हैं तो आपका अम्मी अब्बू या कोई जिसके साथ लड़ाई हो तो वो आपको घसीटता है। इसे हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, लेकिन जो दर्द, जो मुसीबत, जो जुल्म भरपा, जो तबाही उस वक्त की कलीसिया पर हुई, हम उसकी गहराई तक उतर नहीं सकते। और यहां हम अंदाजा लगा सकते हैं गोजरा का वाकया, जब 400 से 500 खानदानों पर 5,000 लोगों ने दावा बोला, और ऐसा उन्होंने केमिकल इस्तेमाल किया था जिससे गाडर भी जल गए थे। वो केमिकल जो इस्तेमाल किया गया था वो साबका जो जंग थी जो चाइना में और किसी और ममालक में लगी थी वहां पर केमिकल इस्तेमाल किया गया था पाउडर किस्म का। जब वो उड़ाया जाता था अगर उसे आग लगाई जाए तो आग फैल जाती थी, ऐसी आग थी जिसे पानी भी नहीं रोक सकता था। तो पालूस रसूल घसीट घसीट कर घरों में घुसकर ईमानदार लड़कों मर्दों को औरतों को कैदखाना में डालता था। सो ये पालूस रसूल का पहले पेशा था जब वो मजहबी शख्स था, अख्तियार वाला था, कुदरत से उसे नवाजा गया था सियासतदानों की। सो सौल का ये काम था। हम और भी हवाला जात देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर अगले ही बाब की पहली आयत में। जब हम 9वें बाब की पहली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर भी लिखा है, और सौल जो अभी तक, पूरे बाब में ये जिक्र मिलता है और अगला बाब शुरू होता है, और सौल जो अभी तक खुदावंद के शिगिर्दों के धमकाने और कत्ल करने की धुन में था। धुन, जैसे कहते हैं ना, कोई कमला हो जाता है कमला, कि और कोई बात का उसे कोई भी क्या कहते हैं फिक्र नहीं, सिर्फ वो चलों की तरह एक ही काम में पड़ा हुआ है। और उसका काम क्या है? यीशु मसीह के शिगिर्दों को धमकाना और कत्ल करने की धुन में था। सरदार काहिनों के पास गया और उनसे दमिश्क के रास्ते की तरफ जाने के लिए क्या लिया? नामा लिया, खत लिया, इख्तियारनामा लिया। जैसे आज के दौर में पुलिस वाले जब किसी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वारंट। वारंट, मुझे इजाजतनामा दें कि फलां लड़के को या फलां मुजरम को मैं जाकर पकड़ लाऊं। सो सौल ने यही किया। वो सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि मुझे मजमून का खत दे ताकि मैं जाकर उन तमाम मर्दों और औरतों को जो मसीह का नाम लेते हैं तबाहो बर्बाद करूं और बांध कर वापस यहां लाऊं। लेकिन क्या कहते हैं कि हर एक चीज का वक्त है, और उसका वक्त पूरा हो चुका था। इसी बाब में वो खुदावंद यीशु मसीह से मुखातब हुआ, घोड़े पर जा रहा है, इसी धुन में कि कैसे कैसे उनको मैं मारूंगा, कैसे कैसे उनको कत्ल करूंगा। बहुत से मुख्तलिफ तरीके से उस दौर में कत्ल किया जाता था, जिंदा लोगों को जलाया जाता था, फांसी दी जाती थी, बहुत दफा लोगों को सबक देने के लिए इंसानों के जिस्म के हिस्से करके फैला दिए जाते थे, और फिर बहुत दफा उन्हें क्या किया जाता था? फांसी देकर शाम तक लटका दिया जाता था ताकि लोग देखकर सबक हासिल करें कि वो यीशु मसीह की पैरवी नहीं करेंगे। सो ये बंदा इसी धुन में है। धुन का लफ्ज हम अगर उसे खींचना शुरू करें तो बहुत दफा इसका हमें थोड़ा सा जायका मिलता है। जब फिल्मों में देखते हैं कि किसी को किसी से प्यार हो जाता है, इंडिया की फिल्मों का यही हाल है कि वो अपनी जात पात सब कुछ भूलकर लड़की के माँ बाप और उसके खानदान से लड़ने के लिए तैयार है। ऐसी धुन, कमला हो जाना, दीवाना हो जाना। सो ये पालूस रसूल का हाल था, लेकिन यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ। और इसी बाब में जिक्र मिलता है जब हम देखते हैं कि तीसरी आयत में लिखा है, जब वो सफर करते हुए दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा, और ये आवाज सुनी कि ए साउल, ए साउल। हो सकता है आपने भी ये आवाज सुनी हो। बाइबल मुकद्दस में जब कभी भी लफ्ज ए साउल, मार्था मार्था, सैमुअल सैमुअल, दाऊद दाऊद, जब भी यीशु मसीह दोबारा दोबारा दोहराते हैं, जैसे कि यूहन्ना की इंजील में कम से कम 36 दफा यीशु मसीह ने कहा है, मैं सच सच कहता हूं। यहूदी रिवाज में जब भी कोई रब्बी या उस्ताद तालीम देने से पहले ये बात दोहराता था तो इसका मतलब था कि वो बहुत गहरी सच्चाई या तवज्जो की बात करने वाला है। सो ये क्या था उस दौर का तरीकाकार था। आज के दौर में भी है, जब हमारे बच्चे बार बार गलत करते हैं तो हम कहते हैं नेम नेम, इसका मतलब है कि बाप या माँ तवज्जो चाहती है कि मैं तुझसे कोई बात करना चाहता हूँ। सो खुदावंद यीशु मसीह ने साउल से कहा, साउल साउल तू मुझे क्यों सताता है। इस जुमला में हम कई दिन गुजार सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तू मुझे क्यों सताता है, हालांकि यीशु मसीह आसमान पर है। क्यों? क्योंकि कलीसिया मसीह का बदन है, जो कुछ हम पर होता है यीशु मसीह उसे महसूस करता है, जो कुछ कलीसिया के साथ होता है यीशु मसीह उसकी क्या करता है, अपनी जान में अपने रूह में उसकी फिक्र और उसका दुख महसूस करता है, क्योंकि हम उसका बदन है। सो ये पालूस सौल सौल से ये पालूस कब बना? जब उसने नूर देखा और उसकी जिंदगी बदल गई, और इसी मजहबी रहमना में वो सारा जोश लिया, सारी कुव्वत ली, वो सारी तालीम जो उसने हासिल की, वो ही जो एक वक्त में खिलाफ था, उसने क्या करना शुरू कर दिया, मसीह की मनादी करना शुरू कर दी। सो आज हमने सिर्फ देखा है कि सौल कौन था और उसका पेशा क्या था। अगर आज हमारी जिंदगी में ऐसा वाकया है कि हम सौल की तरह अमलदारी कर रहे हैं कि खुदा का खादम आ गया तो उसे झटकारना, खुदा के लोगों पर ठट्ठे उड़ाना, तो खुदावंद हमें भी पुकार कर कहता है, फैसल फैसल मेरे बेटे मेरी तरफ तवज्जो कर, उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। और आपकी जिंदगी में ऐसे ही अजीब काम होंगे। सो ये वो खुदा का सूरमा इफ़्सियों 3 बाप में रूमियों की कैद खाना में बैठा है, जो लोगों को कैदों में डालता था, बैठा है और कहता है, मेरे कैद होने की वजह यह है कि मैं जिसकी मुखालफत करता था अब उसी की मनादी करता हूं। और नौवें बाप में आप पढ़ सकते हैं माल में, जब लोगों को पता चला कि साउल जो मसीहियों को कत्ल करता था अब वो उसी की जिसकी मुखालफत करता था उसकी मनादी करता है, तो लोग हैरान हुए। सो हमारी जिंदगी का भी मकसद ये है कि लोग हमारी जिंदगी देखकर हैरान हों कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगर आज हमारे दरमियान कोई सौल है, यानी कि सिर्फ अपने आप में इतना मगन है, अपने आप में इतना मगन है, खुद ही में इतना मगन है, आजकल के बच्चों को हम देख लें कि बच्चों में बहुत ज्यादा क्या पाई जाती है, नफरत पाई जाती है एक दूसरे के लिए। अगर हम कुछ कर सकते हैं अपने घरों में तो सबसे जो अहम बात है वो ये है कि एक दूसरे को मोहब्बत करना सिखाएं। सबसे बड़ा हुक्म पुराने अहदनामा में, सबसे बड़ा हुक्म नए अहदनामा में यीशु मसीह ने ये किया और ये दिया, एक दूसरे से मोहब्बत रखो। नौजवानों आपसे यही दरख्वास्त है और खुदा का कलाम यही कहता है, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, उसमें कोई भी वजह बाकी नहीं रहती। नहीं, इसने मेरे 2 रुपये नहीं दिए इसलिए मैं उसे मोहब्बत नहीं रखूंगा, यीशु मसीह ने कहा मोहब्बत रखो। और मोहब्बत का फल किस शह से पैदा होता है, पतरस ने सवाल किया कि मैं कितनी दफा अपने भाई से मोहब्बत करूं, दूसरे लफ्जों में कितनी दफा अपने भाई को माफ करूं। अगर मोहब्बत नहीं तो माफी नहीं, अगर माफी नहीं तो रिश्ता नहीं, अगर रिश्ता नहीं तो फिर मुर्दगी है। तो हम कह सकते हैं कि हम कितनी दफ़ा एक दूसरे को माफ़ करें, कितनी दफ़ा एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दिन में 490 दफ़ा। यीशु मसीह ने कहा 7 के 70 दफ़ा, जिसका मतलब बनता है जब जमा तफरीक करते हैं 490 दफ़ा। हर रोज़ हमें खावंद को बीवी से, बच्चों को माँ बाप से, दोस्तों से, एक दूसरे से मोहब्बत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम हाथ भर गिने चुने लोग इस कलीसिया में हैं और हमारी लड़ाई किसी इख्तियार वाले से नहीं बल्कि आपस में ही है। मोहब्बत करने की जरूरत है, माफ करने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए भला करने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए बरकत चाहने की जरूरत है, ना के एक दूसरे की तबाही। सो आए हम खुदा के हजूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, आज अगर हमारे दिलों में कहीं भी साउल जिंदा है, जो तकब्बर, जो इस नशे में धुंध है कि तेरी मुखालफत करे, तो खुदावंद उस साउल को जो हमारे ज़िंदगी के किसी भी हिस्सा में गुस्से की सूरत में, शक की सूरत में और किसी भी चुगली चिकारी की सूरत में है, खुदावंद तू उसे पुकार और उसे खुदावंद खुदा ख़त्म कर, ताकि हम पालूस की तरह खाकसार बनकर तेरी परस्तिश करें। और जैसे उसकी ज़िंदगी में से बहुत से लोगों ने कहा कि ये खुदा का बंदा है, हमारी ज़िंदगियों में से देखकर कहें कि ये मसीह के लोग हैं, और हालांकि खुदावंद एक दूसरे को इतना माफ़ करें, इतना माफ़ करें कि तेरी मोहब्बत कसरत से हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहर हो। आए हुए तमाम माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूँ, सबको छू कसरत से बरकत दे।